नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैलिफोर्निया स्थित सौर ऊर्जा सॉफ्टवेयर निर्माता सेंसहॉक में 3.2 करोड़ डॉलर में 79.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि इस अधिग्रहण के साथ ही सौर ऊर्जा क्षेत्र में रिलायंस की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। 2018 में स्थापित सेंसहॉक सौर उद्योग के लिए उपकरण विकसित करती है ताकि कंपनियों को प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और स्वचालन का उपयोग करने में मदद मिल सके। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी का कारोबार $23 लाख रहा था। रिलायंस ने बयान में कहा कि उसने सेंसहॉक में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 3.2 करोड़ डॉलर के कुल लेनदेन मूल्य के लिए पक्का करार किया है, जिसमें भविष्य के विकास के लिए धन, उत्पादों की वाणिज्यिक उपलब्धता और अनुसंधान एवं विकास शामिल है। दिल्ली के समीप उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होने वाले विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। सम्मेलन 12 से 15 सितंबर तक चलेगा। इसको लेकर पुलिस, जिला प्रशासन व अन्य एजेंसियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सम्मेलन में 40 देश भाग लेंगे। देश 48 वर्ष बाद विश्व डेयरी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इससे पहले आखिरी बार 1974 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेज़बानी की थी। सूत्रों ने कहा कि इसमें डेयरी उद्योग से जुड़ी नवीन तकनीक और प्रणाली को समझने का मौका मिलेगा। सम्मेलन में वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यावसायिक और विपणन सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें दुनिया भर के डेयरी विशेषज्ञ, नेता और संबंधित पक्ष डेयरी क्षेत्र के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इसके जरिए भारत विकसित देशों से सबक लेकर दूध उत्पादकता में सुधार करेगा। दक्षिण कोरिया की वाहन कंपनी हुंडई को आपूर्ति संबंधी अड़चने दूर होने से इस साल भारतीय बाजार में अब तक का सर्वाधिक बिक्री आंकड़ा हासिल करने की उम्मीद है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के निदेशक तरुण गर्ग ने पीटीआई भाषा के साथ बातचीत में ये संभावना जताई। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर की आपूर्ति में सुधार आने से वाहनों की बिक्री काफ़ी अच्छी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा आगामी मौसम में कंपनी को मांग में तेज़ी रहने की भी उम्मीद है। गर्ग ने कहा, सेमीकंडक्टर की स्थिति अब ठीक हो रही है और मांग में मजबूती का सिलसिला भी जारी है। इस साल हमें पूरी उम्मीद है कि हम भारतीय बाजार में अपने सबसे अच्छा बिक्री आंकड़ा हासिल करने में सफल रहेंगे। हुंडई का भारत में अब तक सर्वाधिक बिक्री आंकड़ा 2018 में 5.5 लाख वाहनों का रहा है। कंपनी ने अगस्त के महीने में 49,510 वाहनों की थोक बिक्री की, जो एक साल पहले की तुलना में 6% की वृद्धि है। कैनरा बैंक ने मंगलवार को विभिन्न अवधि के ऋण के लिए कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर में 0.15% तक की बढ़ोतरी की है। बैंक ने मंगलवार को शेयर बाजारों को ये जानकारी दी। बैंक ने कहा कि ये बढ़ोतरी बुधवार से लागू होगी। एक साल की अवधि की बेंचमार्क MCLR मौजूदा 7.65% से बढ़कर 7.75% होगी। वाहन, व्यक्तिगत और गृह ऋण जैसे ज़्यादातर उपभोक्ता कर्ज की ब्याज दरें इसी के आधार पर तय होती हैं। सूचना में कहा गया है कि एक दिन से लेकर एक महीने की अवधि की MCLR में 0.10% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि 3 महीने के ऋण के लिए MCLR 0.15% बढ़ोतरी के साथ 7.25% हो गई है। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद तमाम वाणिज्यिक बैंक कर्ज पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी NTPC की इकाई NTPC रिन्यूएबल एनर्जी ने दामोदर घाटी निगम के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम कंपनी ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी गठित की है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और परियोजनाओं का विकास, परिचालन और उनका रखरखाव करना है। NTPC ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, कंपनी की पूर्ण अनुषंगी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने दामोदर घाटी निगम के साथ मिलकर 25 अगस्त 2022 को संयुक्त उद्यम इकाई ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड गठित की है। इसमें NTPC REL की हिस्सेदारी 51% और DVC की 49% है। कंपनी पंजीयक ने संयुक्त उद्यम इकाई गठन को लेकर प्रमाण पत्र 6 सितंबर 2022 को जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य दामोदर घाटी निगम के पास उपलब्ध जलाशयों और जमीन पर नवीकरणीय ऊर्जा पार्क तथा परियोजनाओं का विकास, परिचालन और रखरखाव करना है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन की मंगलवार को घोषणा की। 47 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु होंगे। सहकारिता मंत्रालय ने बयान में कहा कि नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति सरकार की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए बनाई जा रही है। समिति के गठन की घोषणा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। बयान में कहा गया, समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य, जिला व प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव और सहकारी समितियों के पंजीयक तथा केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों से ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी। ये सहकारी समितियां कृषि, प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, बुनाई, ऋण और विपणन समेत विविध कार्यकलापों में सक्रिय हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर नमस्कार।